आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड दुआ का, जिसको हम दुआ के साथ देख रहे हैं, और वो क्या है, इन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नी। इन्नी क्या है, इन और इन्ना और या, बेशक मैं। सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में भी छोटा लगता है। इन्नी मैं वाहिद मुतकल्लिम है, क्या हूं। नेक्स्ट देखिए अब्दु का, तेरा बंदा, मैं तेरा बंदा हूं। और अभी आप देखेंगे कि इस नाम की तकरार है, तो आइए जरा लफ्ज अब्द को समझते हैं। ये है जान, इबादत की। अब्द का लफ्ज आइन, बा और दाल से है। अल अबूदिया, किसी के सामने जिल्लत और इनकसारी जाहिर करना। मगर अल इबादा का लफ्ज इंतहाई दर्जे की जिल्लत और इनकसारी जाहिर करने पर बोला जाता है। इससे साबित हुआ कि मानवी एतबार से अल इबादा का लफ्ज अल अबूदियत से या अल अबूदिया से ज्यादा बलीग है, ज्यादा उसमें बलागत पाई जाती है। यानी आप कह लें कि लफ्ज अबूदियत से ज्यादा अल इबादा। और बात यह है, हमने बचपन से एक ही लफ्ज सुना है, लिखिए अल्लाह की इबादत करो। आज आपको जो सबक मिल रहा है वो अब्द बनने का है, और यही आपको सूरह फातिहा में भी मिलेगा। जब आप अब्द बनते हैं तो ये आला मुकाम है, इबादत करने का मुकाम आला। ये बात बता रही हूं इस वक्त मुश्किल लफ्जों में। देखिए इबादत करना वक्ती कैफियत है। आप इबादत करके फारिग, और हमारे यहां तो इबादत का मुराद नमाज, रोजा, हज, जकात विदाउट एनी पॉज, सौम सलात की पाबंद। लड़की इबादत करती है वो बस इबादत है। जबकि आप अब्द बनते हैं ना, यहां अबूदियत की बात नहीं, अब्दियत की बात है, गुलामी की बात है। तो अब्द बनना 24 घंटे का है, गुलामी 24 घंटे की होती है। बंदा नमाज पढ़ के फारिग, वो कहता है मैंने इबादत कर ली, अब मुझे ना थोड़ी देर कोई रोके। लेकिन जो अब्द होता है ना, वो 24/7 का गुलाम होता है। इसको आज समझ के जाइएगा, फिर आपके लिए कल आना और उससे अगली बातें और पूरा दौरे कुरान सुनना आसान हो जाएगा। याद रखिए कि सबसे बड़ा मुतालबा जो अल्लाह सुबहान तआला का हमसे है, बल्कि मैं इसके बारे में कह देती हूँ कि एक ही मुतालबा अल्लाह का हमसे, और वो कह के वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कि दुनिया में भेजा जाना इसका मकसद बंदगी थी, और जो जिंदगी बंदगी के बगैर गुजर गई वो शर्मिंदगी है निरी। और आप लिख सकते हैं जिसके लिए कोई आपसे एक जुमला पूछ ले, कोई एथियस्ट, कोई एग्नोस्टिक, ना वो अल्लाह को मानता ना मकसद हयात को मानता, वो कहते हैं तुम मुसलमान हो, बताओ कि अब फिर हमें गॉड ने पैदा क्यों किया। तो एक जुमला, लिया बुदू, उसकी इबादत के लिए, उसके बंदे बने। जिस चीज के लिए पैदा किया वही मकसद था, बाकी तो साइड की चीजें। तो लिखिए इबादत की बात यहां करके किसी के सामने जिल्लत और इनकसारी जाहिर करने की बात की। जब तक आपके अंदर अपने आप को छोटा समझने की कैफियत नहीं आती, आप कभी इबादत का लुत्फ ले नहीं सकते। और इबादत की मुस्तक भी वही जात हो सकती है जो बेहद साहिब फजलो इनाम हो, और ऐसी जात सिर्फ अल्लाह सुबहाना तला की जात है, पक्की बात है। आप किसी पत्थर के आगे, हजर के आगे, शजर के आगे, जिंदा के आगे, मुर्दा के आगे अगर झुकते हैं, आप उसको क्या करते हैं वो छोड़ें, लेकिन आप अपने आप को अपने मुकाम से नीचे गिराते हैं। लकद खलकनल इंसान नफी अखसनी तकवीम सुमरदत नाहू असफल साफिलीन, अल्लाह ने इंसान को आला तकरीम दी, वाला कद कर रम ना बनी आदम, लेकिन इंसान खुद ही नीचों से नीचा हो जाए तो ये उसकी मर्जी है। सिर्फ अल्लाह ही सजदा है कि बंदा उसके आगे झुके, उसके आगे चले। और याद रखिए कि सूरत बनी इसराइल की आयत 23 में आता है अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। सवाल क्या, थोड़ा सा इबादत को समझना चाहते हैं। इबादत क्या, कैसे, कितनी किस्म की? तो इबादत की दो किस्में होती हैं। एक को कहते हैं इबादत बित तस्खीर, और एक को कहते हैं इबादत बिल इख्तियार। बिल तस्खीर क्या है, बाय फोर्स। सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, ये जानवर, ये एनिमल, ये पहाड़, ये दरिया बाय फोर्स बंदे बन चुके हैं, यानी जिसमें आपका इख्तियार नहीं है, सूरज का इख्तियार नहीं, चांद का इख्तियार नहीं, सितारों का इख्तियार नहीं है। लेकिन जो इबादत है ना बिल इख्तियार, असल ये मतलूब है, इस इबादत को अगर आप समझ जाते हैं तो बात समझ आ जाती है। इंसान जो इबादत करता है ना, वो बिल इख्तियार करता है, और इसी का अजर है, सारा अजर इसी का है। जितना आप अपने रब को पहचानते जाते हैं, अपने आप को छोटे से छोटा तसव्वुर करते हैं। और देखिए, दो लफ्ज लिखिए, इताअत वर्सेस बंदगी। हम किसी की भी बात मानते हैं, लोग हुक्मरानों की मानते हैं, बादशाह सलामत की मानते हैं, सामने उसके दरबारी झुकते भी थे, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं ना कि दिल से भी खुश हो। बात समझ रहे हैं? यानी इताअत जबरदस्ती भी कराई जा सकती है। बाप बेटे को गुस्से से कहते, लेके आओ मेरे जूते, बेटा ले आएगा, दिल में बड़बड़ करता रहे, गुस्सा करे। बीवी चाय का कप बना के रख देगी, पता नहीं कितनी गुस्से में। बंदगी गुस्से से नहीं होती। देखिए, महसूस कीजिए, अगर आपको रब की बंदगी करनी है ना, तो उसके लिए लाजिम है कि आपको उससे मोहब्बत हो। तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, तो लफ्ज बंदगी में दो चीजें हैं। आगे चलता जाएगा, इस साल हमारे थीम के अंदर जहां दिल की बातें हैं ना, वहां हिदायत और बंदगी की भी बातें हैं, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड है। हमा तन मोहब्बत, आज एक जुमला सुन लें, कमाल अल हुब कमाल अज़ुल। मोहब्बत की भी इंतहा हा से हुब्बा दाना हब। बंदे मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डला होता है, और कमाल जुल अपनी आजजी, जिल्लत पस्ती, दबा होना। पहले दौर में गुलामी थी ना, तो हम उसको आज रिलेट नहीं कर पाते। आज के सर्वेंट और पिछले दौर के गुलाम में फर्क क्या था? आज आप जिसको फुल टाइम वर्कर कहते हैं या फास्ट जॉब कहते हैं, वो दिन के 8 घंटे होते हैं। अमेरिका में उसको 40 आवर्स कहते हैं, आज यहां आप 37 कुछ कह दीजिए, 45 मिनट का घंटा करें या जो मर्जी करें। वो वर्कर, वो इम्प्लॉई जब अपनी जगह पे अपने वक्त पे आके बैठ गया, 8 घंटे पूरे करके चाबी देकर वो उठ के जाए, अब मालिक के पास कोई इख्तियार नहीं, क्या पूछे किधर जा रहे हो, क्या खाओगे, कब सोओगे, उसकी मर्जी। जितनी देर का उसने अपने आप को कमिट किया वो करेगा, पैसे लेके चला जाएगा। इसको कहते हैं मुलाजमत, या इसको आप कह लीजिए कि ये है वो काम कि जिसको आप इताअत कह सकते हैं पैसों के लिए। इसके बरक जो गुलाम, पहले दौर की गुलामी को तसव्वुर में लाइए, गुलाम अपना नहीं होता, उसका वक्त अपना नहीं, वो कमा के लाएगा, उसके पैसे मालिक को मिलेंगे, जो खाने को देगा खाएगा, काम करेगा तो करना पड़ेगा। लेकिन जो दुनिया के गुलाम है, वो भी दिल से चाहे तो मालिक को गालियां दे। बंदा जब रब का गुलाम बनता है ना, तो पहले मोहब्बत करता है। तो एक जुमला लिखिए, और आज का काबले गौर जुमला, बंदगी इबादत की सबसे अहम किस्म है, ये सबसे ऊपर है। इसके बाद फिर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जो चार चीजें वो इसके अंदर है। यानी अगर बंदगी नहीं तो नमाज नमाज नहीं, अगर बंदगी नहीं तो रोजा रोजा नहीं, हज हज नहीं, ज़कात ज़कात नहीं। तो पहला मुतालबा, वाहिद मुतालबा जो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ है अल्लाह का, वो क्या है, मेरे बंदे बनो, इय्याका नाबुदु। और इबादत में दो चीजें मैंने आज आपको बता दी, कमाल अल हुब कमाल अल ज़ुल। और आगे इस पे इतना कुछ है कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या वो रास्ता है। अरब लोग जिस रास्ते से बहुत कसरत से गुजरते, और उनके ऊंटों के गुजरने की वजह से वो रास्ते रीद जाते, जैसे अब कहते हैं ना कि रास्ते को कुचल दिया, तो उसको अत-तरीकुल माबद कहते थे, कुचला जाने वाला रास्ता। तो जब बंदा अपने आप को अल्लाह का अब्द कहता है, तो वो अपने आप को कुचलता है, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई च्वाइस नहीं। वही इब्राहिम बिन आदम के पास जो गुलाम था, उसी के जुमले याद कर लीजिए, क्या नाम है का, जो कहेंगे वो नाम है, क्या खाओगे का, गुलाम की क्या औकात, जो देंगे खा लूंगा, क्या पहनते हो, क्या करोगे, जो देंगे का, अच्छा 4 पैसों का गुलाम लाया हूं, इतनी प्यारी बातें कर रहा है, और मैं दिन रात या का नाबुद व या का नस्तईन कहता हूं। आज आपने यहां से उठने से पहले अपनी इस कैफियत को महसूस करना है। और जिसको अपनी औकात समझ आ गई, उसके लिए बंदा बनना बहुत आसान होगा। इंसान अपनी हस्ती को महसूस करे, और आप देखेंगे कि एक बंदा, उसको क्या बड़ा बनने का हक है। जो दुनिया में जब भेजा गया, तो आप देखिए, बच्चा जो मां के फीटस में होता है ना, जब बिल्कुल आगाज होता है ना, नुक्ता आगाज जिसको आप कह सकते हैं, 5 वीक का बेबी, एक सेसमी सीड, तिल के दाने के बराबर उसका वजन होता है। उसको आप अगर देखें और उसके साथ एक तिल को रखें, तो वो आपको बिल्कुल उतना ही लगेगा। फिर इसी तरह 7 वीक का जब हो जाता है ना तो ब्लूबेरी, मतलब आप सिर्फ उनका फर्क देखिए कि कैसे अल्लाह सुबहाना ताला एक इंसान को मुख्तलिफ तरीके से गुजारता है ताकि इसकी अकड़ टूट जाए। 6 वीक का बच्चा एक मसूर के दाने के जितना वजन होता है, लेंटल सीड। फिर बेरी, ब्लू बेर जो होता है, 7 वीक का बच्चा ब्लू बेर के बराबर है। 8 वीक का बच्चा किडनी बीन के बराबर का, यानी राजमा जिसको बोलते हैं, सुरख दाना। और इसके बाद जरा सा और बड़ा कीजिए तो 9 वीक का हो गया तो अंगूर का दाना। 10 वीक का हुआ तो एक पीकॉन, एक नट है, उसके वजन के बराबर का वो बच्चा। और 11 वीक का बच्चा एक खजूर के वजन के बराबर का बच्चा होता है। 12 वीक का जब होता है तो एक लाइम, सबस जो लेमन है ना, उसके बराबर हो जाता है। मुझे बताइए कि क्या है कोई मुकाम आपका मेरा? तो जरा अगला लफ्ज देखिए, इब्नु, बेटा हूं। किसका? यानी अब आप अपने दिल में अपने आप को बेटी कह लीजिए। बाज लोग इधर अमती का लफ्ज बोल देते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है कि जो दुआ के लफ्ज हदीस में है वही करें। तो अगर सवाल उभरता है कि हम जब ये दुआ मांगे तो इब्नू कहें कि अमती के, तो मैं तो इब्नी कहती हूँ, अल्लाह को पता है कि मैं बेटा हूं कि बेटी हूं। तो क्या कहा? इब्नू, बेटा हूं, आबदी का, तेरे बंदे का। ये कौन है? मेरे वालिद। लोग कितना नाम लगाते हैं अपने बापों का। मैं तुम्हें बताऊं मैं कौन हूं, मैं किसकी औलाद हूं। अलस्माल हुस्ना में सुनाया था कि किसी वक्त के मुस्लिम खलीफा का बिगड़ा हुआ बेटा रूल तोड़ता है और अपने आप को बड़ा बन के दिखाता है। तो जब उसको पकड़ लिया अदालत ने तो सजा देनी चाहिए, तो कहने लगा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। उनका ख्याल था कि शायद काजी साहब को पता ही नहीं है कि मेरा बाप बड़ा खलीफा है इस वक्त का। तो कहने का मुझे पता है तू कौन है। तू वो है जो गंदगी के रस्ते से निकला और तू पानी का एक हकीर कतरा था और तेरे जिस्म में गंदगी भरी रहती है। तू अगर अल्लाह का हुक्म तोड़ेगा तो मैं तुझे सजा दूंगा। इब्न अमती हमारे बड़े बहुत वो शेख थे जी, और वो तो जी खानदानी थे, और वो रईस थे, और वो आलिम थे। बंदा क्या कहता है? इब्नू, बेटा हूं, मेरा बाप भी तेरा बंदा, और इब्न अमती का, मेरी माँ तेरी बंदी। यानी सारी बाप दादा की स्ट्रिंग्स कट गई कि अल्लाह हम भी आजिज, हमारे बड़े भी आजिज। लोग कहते हैं ना हम तो जी खानदानी गुलाम है। यानी लिख लें इधर जुमला, ए अल्लाह मैं, मेरे माँ बाप, हम तो खानदानी गुलाम है तेरे आगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस बंदगी को महसूस कीजिए। देखिए ये वो रूट है जिससे फिर एतात और इबादात का दरख्त उगता है। अफसोस के साथ कहूंगी कि आज नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, लेकिन बंदगी नहीं है। नमाज पढ़ के नहीं झुकते, दिन में कई बार सजदा करा के माथे को जमीन पर रखा जाता है फिर नहीं झुकते। रोजे रखा के हलाल को भी हराम कर दिया जाता है वक्ती तौर पे, फिर भी नहीं झुकते। तो मुझे बताइए तो सही कि लोग फिर कैसे झुकेंगे? इसको लाइए, छोटे बन के जिएंगे तो मजा आएगा। यहां तक तो बात हुई बंदगी की। बंदा अपनी औकात बताता है। और आज से अपने आप को एक छोटा सा काम दीजिए। जब सुबह बिस्तर से उठे, अपने आप को जरा सीधा सादा करें, खड़े होना तो कहें, ए अल्लाह बंदी हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मातना वलैहि नुशूर। ए अल्लाह तूने मुझे मौत के बाद जिंदगी दे दी है ना, तो अब मैं हाजिर हूं। जैसे सुबह मासी आके पूछती है ना, बाजी अस्सलाम वालेकुम, बाजी आज क्या करना है, काम बताएं। कोई मजदूर मिस्त्री जाके, सलाम सेठ साहब, बंदा हाजिर, हुक्म करें जी। आज से कम सुबह उठकर 3 बार अकेले में वॉशरूम में जाके ये जुमला बोले, अल्लाह बंदी उठ गई है, ये पहला शुक्र है तूने मारा नहीं। मेरी मौत के बाद तूने मुझे जिंदगी दी है, मैं हाजिर हूं, हुक्म कर मैं क्या करूं। यकीन करें सुबह अपनी थिंग्स टू डू, अपनी डेली शीट, आपको चाहिए कि आज करना क्या है, लोगों से मत मांगे, उस रब से मांगिए। आप देखेंगे कि हमें अपनी औकात समझ आ जाएगी। और फिर उसके बाद अब सेकंड थिंग जो इस दुआ की और भी खूबसूरत चीज है वो क्या है, चलिए नेक्स्ट पे। नासियती, मेरी पेशानी। अरबी जुबान में इसको जरा सा समझिएगा, उर्दू में हम मथा कहते हैं, अरबिक में हम इसको पेशानी कहते हैं। पेशानी के लिए अरबी में 3 लफ्ज आते हैं। एक आता है जबीन, नाम भी है हमारे जबीन, जुबन से, फलम मासलमा वतल्लहु लिल जबीन। जब दोनों ने हुक्म मान लिया, यानी और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मामला मारूफ है, जिसके ऊपर हम लोग ईद उल अदहा के मौके पे قربانیاں کرتے ہیں اس کے ذکر میں یہ لفظ جبین کا آ گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے, جبین کہتے ہیں ماتھے کے ایک کنارے کو, ون سائڈ. جیسے اگر آپ کسی کو سائڈ سے دیکھیں نا تو آپ کو اس کا ایک کنارہ دکھتا ہے, اور پیشانی کی دونوں اطراف, ان کو اجبیان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دوسرا لفظ جو آیا ہے وہ ہے جبا, جین با ہا جبا. اور یہ لفظ قرآن میں سورت توبہ میں آتا ہے آیت 35, فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم, ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھے داغی جائیں گی. تو جب کہتے ہیں پیشانی کی چوڑائی, یعنی یہ سامنے جس کو آپ پنجابی میں متھا کہتے ہیں, جہاں ٹکا لگاتے ہیں, یہ متھا, سائڈز ہوں گی تو آپ دیکھیے جبین ہوں گی, درمیان کا حصہ ہوگا تو جبا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دونوں ہی یہاں نہیں, اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو سجدے کے وقت زمین پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیشانی کی چوڑائی اور اس کی خوبصورتی کے لیے جبہن آتا ہے. دراصل پیشانی کے سامنے کے حصے کو کہتے ہیں جو سجدے کے وقت زمین پر لگتا ہے, پیشانی کے دونوں اطراف کا درمیانی حصہ, اور اس کی جمع ہوتی ہے جباہ, جو کہ اس آیت میں آئی. اب دیکھتے ہیں جو لفظ ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے, ناسیتی. ناسیتی کہتے ہیں پیشانی یا پیشانی کے بالوں کو جب وہ لمبے ہوں, وہ بال جو دراز ہوں, اور پیشانی کے بالوں پر بھی ہوتا ہے اور پیشانی پر بھی, اور اس کی جمع ہے نواسیش. قرآن پاک کی آیت پڑھوں گی تو آپ کو یاد آ جائے گا, یورف المجرمون بسیماہم فیوخذو بالنواسی والاقدام. آگے کیا ہوگا, فبئی آلائی ربکما تکذبان, گناہگار اپنے چہرے سے ہی پہچان لیے جائیں گے, تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. تو کیا پتا چلا, یہاں لفظ نہ تو جبین آیا اور نہ یہاں جبہن آیا, یہاں ناسیتی کیوں آ جایا؟ بہت بڑی بات ہے, ہم اللہ کی بندگی میں خود کو دیتے ہیں. اگلے لفظ کو ساتھ جوڑیے, بی یدی کا, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. جب پیشانی ہاتھ میں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں, تو مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لے. دیکھیے کسی کو بھی کھینچنا ہو, گھسیٹنا ہو, جس کو آپ کہتے ہیں نا نگیٹ نہ ہو, تو بالوں سے پکڑتے ہیں اینڈ پہ. کبھی اللہ نہ کرے کسی کی لڑائی کا منظر دیکھا ہو نا سڑکوں پہ, تو پکڑ کے سب سے مضبوط گرپ. دیکھیں نا کسی کو پکڑیں گے تو ہاتھ پکڑیں گے, اس کا نہیں پکڑاتا, موٹے کو پکڑیں گے اٹھائیں, بال سامنے ہاتھ میں آتے ہیں. اور ابھی جو آیت سنائی ہے وہاں بھی جہنمیوں کو بالوں سے پکڑ کر کھینچنے کی بات ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے. لکھے, ناسیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ, میں تیرا اتنا عاجز مزاج غلام ہوں کہ تو مجھے جب حکم دے نا, میں نہ کام کروں نا, تو مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچ دے. دیکھیں کتے کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں لوگ, بندر کے پاؤں میں کوئی گھنگرو باندھ کے اس کو پکڑتے ہیں. بندہ اس دعا میں اپنے رب کو کہتا ہے کہ میرے مالک, اگر میں نے کبھی نماز نہ پڑھی تو تو خود ہی میرے بالوں سے پکڑ کے نا مجھے زمین پر ڈال دے نا. اور اے میرے مالک, اگر کبھی میں نے, میری ناک کا مسئلہ ہے نا, اونچی ناک اور میری بے عزتی نہ ہو جائے, اگر میں نے ایسا کچھ سوچا تو تجھے پورا میں اختیار دیتا ہوں کہ تو اسی ساری محفل میں میرے بالوں سے پکڑ کے مجھے بندر بنا دینا. کتنی اکڑ ہے آج بندے میں, کبھی آپ نے سوچا ہم دن میں کتنی بار اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں اور کتنی بار اس کے حکم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ بندگی نہیں ہے آج. نمازیں تو فرض سنت نفل ہیں, تسبیح نمازیں ہیں, شبینیں ہیں, ہمارے پاس نمازوں کی کمی نہیں ہے. تسبیح 33 نہیں, 100 نہیں, 500 دانے کی ہے. بندگی نہیں ہے, اس کا حکم سن کے ماننا نہیں. اس وقت معاشرہ, خاندان, برادری, رسم و رواج, یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ اللہ ناسیتی بیدی کا. لوگ کہتے ہیں نا, دیکھیں اس میں بہت سارے محاورے بھی ہوتے ہیں ہماری زبان میں. کبھی کوئی بڑا ہی عاجز بنے نا تو کہتا جی تاڑیاں جتیاں تے ساڑے سر, میرا سر تے تاڑی جتی, ہے نا جملہ. کبھی اس جملے کو اللہ کے آگے بولا آپ نے؟ کبھی آپ اپنے رب کو جس کے ساتھ دن رات کا معاملہ ہے, سانس اکھڑ جائے اس کو بلائیں گے؟ آپ کہتے ہیں گھر میں اکیلے ہیں, کچھ ہو گیا کون پوچھے گا, پانی مانگے کس سے مانگے گا بندہ؟ اگر کسی وقت دل کو کچھ ہو گیا تو کس کو بتائیں گے؟ کسی کو نہیں بتائیں. जब बंदा दुनिया वाले थोड़ा थोड़ा जो आपके काम और वक्त पे कभी कोई कमी काम आया है, और वो रब जिसने आपके उखड़ी सांसों को फिर ठीक कर देना, जिसने आपको उछू लगने के बाद फिर सीधा कर देना कि फिर आपकी आंखें फिर खुल जाती हैं। कभी गोता लगता है ना तो सोचा करे कि गए दुनिया से, तो बंदा उसको ये ना कहे कि नासी यति भी यदिक, अल्लाह पकड़ मेरे सर के बाल, मुझे झुका, संगली डाल दे मेरे सर पे, मुझे झुका। ये मांगते हैं आप इस दुआ में? ये बंदगी है, बंदे बन के जियो, सारी अकड़ खत्म। और मैं आपको 10 दफा ये जुमला आज के सेशन में बोलूंगी, अल्लाह आपसे मुझसे बस एक ही चीज चाहता है जिसका आपसे मेरे जाती ताल्लुक है। दो और चीजें हैं वो आपको दौरे कुरान में कहीं मिल जाएंगी इंशाल्लाह, जिसमें आप और आपको रब, आपको अल्लाह जंगल में पैदा कर देता, गार में पैदा करता, किसी अमेरिका कनाडा में पैदा करके किसी आला मुल्क में भेज देता या किसी देहात में भेज देता, अल्लाह का आपसे बस एक ही मुतालबा है कि मेरे बंदे बन के जियो, शर्म करो, बड़े क्यों बनते हो, छोटे बन के जियो। और इसी से सूरह फातिहा शुरू होती है, ये आपको सब सूरह फातिहा की भी डिटेल मिल रही है, इयाक नअबुदु। चले अल्लाह करे कि हम बंदे बन जाएं। तो क्या कहा, नास यदि भी यदिक, ऐ अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। और उसके बाद आप देखिए, जब आप ये कहते हैं ना, नास यदि भी यदिक मादिन फी या हुक्मुक, जो कुछ तेरा हुक्म मेरे बारे में चलता है, ऐ मेरे मालिक तू मेरे साथ जो भी बात करेगा मैं उस पे राजी हूं। यानी आप इसको खुद से लिखिए कि मादिन फी या हुक्मुक, मेरे माँ मैंने जो जिन माजिन फी या हुक्मुक, मेरे मामले में तेरा जो हुक्म चलता है मैं उस पर राजी हूं। इसमें इशारा लिखे तकदीर। उलमा कराम कहते हैं कि ये जो जुमला है ना शुरू का, जिसमें आप इसको कहते हैं कि नास यदि भी यदिक, यहां इस दुआ में तो इतना ही है, लेकिन एक और दुआ, जैसे कि आपको बहुत से रेफरेंस दिए ना, वो मैं वो बताने लगी, इसलिए आप इसको खुद से लिखेंगे, नास यदि भी यदिक मादिन फी या हुक्मुक, बस ये लफ्ज खुद से लिख लीजिए, लिखना चाहें लिखें, ना लिखें तो भी कोई बात नहीं। और वो कहे कि मा दिन फी या हुक्मुक, मेरे मामले में तेरा हुक्म चलता है, तकदीर पे राजी हूं। बास ने तो नास यदि भी यदि को भी यही कहा कि मेरी तकदीर तेरे हाथ में। तो ये बहुत सारी इसकी शुरुआत होती हैं, जिसमें असल मकसद को नजर में रखें तो बात समझ आ जाती है कि बंदा रब के आगे झुकता है और अपना आप उसको देख के कहता है अल्लाह मैं तेरे साथ बिल्कुल राजी हूं। और इसके बाद फिर अब मांगता क्या है, जरा ये देखिएगा, असलुका, मैं सवाल करता हूं तुझसे, सवाल ही हो तेरे दर का, क्वेश्चन है मेरे पास। और सवाल कैसे करता हूं, बिकुल्ली, साथ हर इस्मिन नाम के। अब यहां से जरा मांगने का सलीका सीखिए, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं नाम के। लफ्ज इस्म को थोड़ा सा देखते हैं, अल इस्म कहते हैं किसी चीज की अलामत जिससे उसे पहचाना जाए। इस्म को इस्म इसलिए कहते हैं कि इससे मुसम्मा का जिक्र बुलंद होता है और उसकी मार्फत हासिल होती है। देखिए ना, आपका नाम कोई ले फौरन पता लग जाएगा आप हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस्म के मानी में लंबा, ये जो लफ्ज ना समावात समूफ, ये भी इसी से है। सूरत हूद की आयत 41 में आता है, इरकबू फीहा बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा। क्या पता चला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पे सवार करते हुए लोगों से क्या कहा, फरकबू फीहा बिस्मिल्लाही मजरेहा, के अल्लाह ही के नाम के साथ है इस कश्ती का चलना और इसका उठना, यानी इसके अंदर जो भी चीज है। इससे सूरत नमल की आयत 30 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा था और उसमें ये चीज आ गई थी कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना, तो लफ्ज अल्लाह में जो इसमें मुराद है इससे नाम हुआ वो। आप देखिए कि जब भी आप किसी का नाम लेते हैं, बस आप देखिए इंसानों के नाम और चीजों के नाम है ना, तो ये सारे नाम आपको क्या बताते हैं कि आप स्पेसिफिकली उस चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं, आप उस चीज के बारे में गौर व फिक्र करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां हम असल में अल्लाह सुबहान तआला से क्या कहते हैं कि मेरे मालिक तेरा नाम बुलंद है और हम तुझे पुकारते हैं। यहां रुक के जरा सा मुहासबा करें पहले अपना, ऐ मेरे मालिक हम तुझे पुकारते हैं तेरे नाम से। हम अमूमन अल्लाह को किसके नाम से पुकारते हैं, हम बीच में दूसरों को डालते हैं, उसके वास्ते उसके वसीले से यहां लिखी अपने लिए अमल की बात। इस दुआ से पता चलता है कि बिकुल इस्मिन आगे जाने की बजाय अल्लाह सुबहान ताला के नाम से मांगना चाहिए। देखिए, आप किसी से ब्राह रास्त मांगे वो फायदेमंद होगा कि गैर ब्राह रास्त, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोचने की बात है। इसलिए कि अल्लाह ही है जो आपके काम करने पे कादिर है। तो जब आप इसको सोचते हैं, आप लोग जब किसी से कुछ मांगते हैं तो आपको कैसे अच्छा लगता है? मसलन आप डायरेक्ट अपने शौहर से कुछ लें, या आप उनके दोस्त को कहें कि मेरे मियाँ को कह दें कि मुझे कुछ पैसे दे दे, कौन सा तरीका अच्छा लगता है? डायरेक्ट अच्छा लगता है। अल्लाह सुबहान ताला को बराह रास्त मांगना अच्छा लगता है। आप जितना ज्यादा अल्लाह सुबहान ताला को बराह रास्त मांगेंगे वो आपको अपना लगेगा। मेरे और तेरे बीच में कोई तीसरा क्यों? हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को फील भी करते हैं और हम इसको महसूस भी कर रहे होते हैं कि जितना ज्यादा आप किसी को प्यार करते हैं, जिसको आप अपना समझते हैं, उतना ज्यादा आप उसे बराह रास्त मामला करते हैं। और हम सब को इस चीज की जरूरत है। देखिए, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। आप एक रब के बन जाइए, फिर देखिए जरा आपका मालिक आपके साथ क्या मामला करता है। और इसी में मजा है। आप जब किसी के बन जाते हैं, किसी को अपना बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप अल्लाह की पसंद के काम भी करते हैं। फिर इसी तरह ये देखिए कि जितना ज्यादा आप अपने रब के साथ मामला अच्छा करते कराते हैं, उतना ज्यादा आप अल्लाह ताला के साथ कुर्बत महसूस करते हैं। तो अब जरा दोबारा देखिए इसी को, लफ्ज कौन सा हमारे सामने रहेगा? इस्मुन। तो इस्म किसको कहते हैं? किसी चीज की पहचान, किसी चीज की अलामत को। आप इसको दोबारा महसूस कीजिए। तो जब आप कहते हैं कि मेरे मालिक, मैं तुझे किन नामों से पुकारती हूँ, आगे देखिए, हुआ वो लका जो तेरे लिए सम्मईता, तूने नाम दिया। ये जो लफ्ज है ना सम्मईता, ये वही है जो भी हमने इस्म लफ्ज के अंदर पढ़ा सीन मीम वॉ से। बिही साथ इसके, नफ्सा का अपने आप को। लफ्ज नफ्स को देखिएगा, नफ्स के मानी होते हैं रूह के। सूरत अल-अनाम आयत 93 में आता है अखरिजु अनफुसकुम, निकालो अपनी जाने। और सूरह बकरा 235 में आता है वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम वाहज़रूह, और जान रखो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है। सूरत मायदा आयत 116 में आता है तालमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिक, और जो बात मेरे दिल में है तू इसे जानता है, जो तेरे नफ्स में मैं इसे नहीं जानता। सूरत आले इमरान आयत 30 में आता है वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है। तो क्या पता चला कि अल्लाह ने कुछ नाम अपने रखे? जरा सा इस पे गौर कीजिए। कोई बच्चा तो अपना नाम खुद नहीं रखता, कुछ लोग बड़े होकर नाम बदल लेते हैं। ये तो हम इंसानों के मामले हैं। अल्लाह सुबहान तआला का मामला क्या है कि उसने अपना नाम भी खुद रखा? इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह सुबहान तआला को नाम कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसीलिए जब आप अस्माउल हुस्ना करते हैं ना, तो आप वही नाम लेते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह ताला के नाम होते हैं या फिर अल्लाह ताला की सिफात होते हैं। कुरान पाक में हमें जिनका तस्करा मिलता है, ऑफकोर्स ऑब्वियसली वो नंबर वन, अहदीस में और आसार में हमें जो चीज मिलती है उसको सेकंड प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह के सारे नाम, क्या आप और मैं सारे नाम ले सकते हैं दुआ के वक्त में? हमें तो याद भी नहीं। तो आज से एक छोटा सा काम कीजिए, अल्लाह के नाम याद कीजिए। 99 नेम्स याद करने पे जन्नत की खुशखबरियां हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह जब आप उससे ज्यादा भी पढ़ेंगे, याद करेंगे और गौर व फिक्र करेंगे, तो फिर उस वक्त हमें और कुर्बत महसूस होगी। आगे चलिए अउया, दूसरी किस्म। अनजलतहु, तूने नाजिल किया इसको। अनजलता का लफ्ज़ में नजला है, नून ज़ा लाम, बुलंद जगह से नीचे उतरने के लिए आता है ये लफ्ज। अरबी में मुहावरा है नजल अन दाबतिन, वो सवारी से उतर पड़ा। नजल फी मकानी कजा, किसी जगह पर ठहरने के लिए आता है। फिर इसी तरह अनजला अफाल में से है, बाब अफाल उतारने के मानों में आता है, जब यानी दूसरों के लिए अलिफ लग जाए तो बाब अफाल बना उतारना। जब कभी अजाब का लफ्ज कुरान में आता है तो उसके लिए लफ्ज अनजला की बजाय अनजाल आता है या इंजाल आता है। इसके बरक्स कुरान पाक और फरिश्तों के नाजिल करने के लिए लफ्ज इंजाल और तंजील आता है। फर्क दोनों में क्या है? तंजील कहते हैं मर्रतन बाद उखरा, एक के बाद दूसरा और मुत्तफरिक तौर पर नाजिल होना, यानी यक लख्त हो गया तो अनजला, जैसे ग्लास लेके किसी के सर पे डाल दिया, और तंजील के कतरा 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 बारिश की तरह उस पर गिर जाए। और इंजाल आम है और इसके लिए आयतें देख लीजिए, सूरत शुरा की 193, नजल बिही रूहुल अमीन, कुरान पाक के लिए दोनों ही लफ्ज आते हैं, ठीक है, इसको एक अमानदार फरिश्ता लेकर उतरा। और सूरत बनी इसराइल 106, व नजल नाहु तंजीला, तो गोया के कुरान पाक के लिए दोनों ही लफ्ज आए हैं। इसकी डिटेल्स का इस वक्त मौका नहीं, फिर कहीं इंशाल्लाह। कहां नाजिल किया? फी में, किताबी का अपनी किताब। अब ये किताब कौन सी है? दो बातें इसमें लिखिए। बास लोग जो इस दुआ की शरह लिखते हैं वो कहते हैं किताब से मुराद कुरान पाक है, और बास कहते हैं लोहे महफूज। हमारे लिए दोनों ही मानी एक्सेप्टेबल है। औ या अल्लम तहू, तूने सिखाया उसको या उसका इल्म दिया। इल्म का लफ्ज आम है। इल्म कहते हैं किसी चीज की हकीकत का इदराक करना, किसी चीज की हकीकत को पा लेना। अहदन किसी एक को, मिन से खल्की का अपनी मखलूक में से। अब मखलूक का लफ्ज है कि खल्क, किसी चीज को पूरी तरह बनाने के लिए अंदाजा लगाना। कभी कभी ये इब्दा के मानों में भी आता है, किसी चीज को बगैर मादे के और बगैर तकलीद के पैदा करना, यानी किसी चीज को बगैर किसी मॉडल के पैदा करना। सूरत अलनाम की पहली ही आयत है खल्क़े समावाती वल अर्थ, यानी उसने आसमान और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया। और इब्दा का मानी क्यों है? क्योंकि इससे पहले इसका मॉडल नहीं था। चलिए, क्या पता चला? अल्लाह की मखलूकात, सोचिए जरा, इससे पता चलता है कि हर मखलूक तस्बीह करती है। सूरह बनी इसराइल में आता है अल्लाह की हर मखलूक तस्बीह करती है लेकिन तुम्हें उसकी तस्बीह का पता नहीं चलता। और फिर आखिरी फॉर्म औ या इस्ता सरता, तूने इख्तियार किया। इस्ता सरता लफ्ज हमारे उर्दू में बड़ा नया सा लग रहा होगा आपको, तो जरा इसको खोलें तो इसमें लफ्ज है असर, आसार, निशानी के लिए आता है ना उर्दू में बोलते हैं आसार कदीमा, निशान छोड़ गए। अरबी जुबान में इसके लिए मुख्तलिफ लफ्ज आते हैं, मसलन असर, अलामत, आयत, मुबसीरतन, शर्त, नुसुब, सीमा, शायर। यहां इस तासर तक क्यों आ गया? इस वजह से कि वो चीज जो अपना निशानी छोड़े, बिही साथ इसके, फी में इल्मी, इल्मिल गैब, गैब का, इंदा का तेरे पास। अब यहां तक दूसरा हिस्सा पूरा हो गया दुआ का, अब आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है जिसमें मांगना है। हम देसी लोग होते तो इतने देर में 500 बार ये दुआ पढ़ चुके होते तस्बीह पे, ऐसे ही है ना, कोई वजीफा ही कर लेते हैं। किसी ने पूछा अच्छा कोई वजीफा बता दे, पता नहीं किस काम का, अल्लाह के नामों के लोग वजायफ करते हैं, तो क्या पता चला कि अभी तक तो सिर्फ बंदे ने रब का मुकाम और अपनी हस्ती को पहचाना। आपको कुछ महसूस हुआ? बहुत बड़ी हस्ती से आप मांग रहे हैं, पहले अपने आपको रिलैक्स करें फिर मांगेंगे अगली चीज। बिल्कुल रिलैक्स्ड, पुरसकून होके सोचें, ऊपर से शुरू करें अल्लाह मैनी अब्दुका से, मैं छोटी, मेरी माँ छोटी, मेरा बाप छोटा, हमारा सारा खानदान छोटा, हमारी पेशानी रब के हाथ में, हमारी इज्जत झूठी, रब की इज्जत सच्ची, हम रब के हर फैसले पे राजी। और फिर उसके बाद अब अल्लाह की तारीफें करें, अल्लाह जी मैं आपकी इतनी तारीफें करती हूँ जितनी आपकी मखलूक है। और यहाँ मुझे वो दुआ भी याद आ रही है कि सुबहान अल्लाह ही वबिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही वज़ीनत अर्शिही वमिदाद कलिमातिही। कैसे एक बंदा अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जोड़ता है ना दुआओं का,